आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th के साइंस का 10th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हमने ग्लास स्लैब से कराया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ ग्लास स्लैब थ्रू अ ग्लास स्लैब, इसमें से कुछ चीजें बच गई थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया था लास्ट क्लास के अंदर। जैसे कि हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से जो रे ऑफ लाइट है वो जब ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम यहाँ पर एयर है और डेंसर मीडियम यहाँ पर ग्लास है, तो जब भी कभी लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम तो ये शिफ्ट कर जाती है टूवर्ड द नॉर्मल, यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू, एंगल की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसको मैंने आप लोगों को एक ट्रिक समझाया था कि आपको बेसिकली एक प्रोडक्ट है, एक मल्टीप्लीकेशन है जो आप लोगों को हमेशा कॉन्स्टेंट रखना होता है, और वो मल्टीप्लीकेशन क्या है अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किस केस में रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आते वक्त वो टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट कर रही है, तो दूसरा केस ऐसा होता है जब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट करती है लाइट। वो कब होता है? वो तब होता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है। तो मैंने आप लोगों को याद करने का एक तरीका बताया था, इसमें बेसिकली आपको क्या करना था, आप लोगों को एंगल देखना था और मीडियम देखना था, जिस मीडियम के अंदर लाइट एंगल बना रही है विथ द नॉर्मल टू द सरफेस वो एंगल आपको चाहिए और आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो आप लोग एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ दैट एंगल व्हिच लाइट इज मेकिंग विद द नॉर्मल टू द सरफेस। एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर बात करें कि जब लाइट ट्रेवल कर रही है इन एयर, तो एयर एक मीडियम है तो इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेकर चलते हैं, तो इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसे हम अभी के लिए एन जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एन ए जो है एन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आप एन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा काम आप ये करेंगे कि उस मीडियम के अंदर यानी कि एयर के अंदर जो लाइट एंगल बना रही है विथ नॉर्मल ये आप चेक करेंगे। तो आप फर्स्ट केस देखिए, यहाँ पर जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इस केस में आप देखिए तो पेज नंबर 173 पर फिगर 10.10 में आप देख सकते हैं एज ए बी के ऊपर लाइट जब पड़ती है तो वो एक एंगल बनाती है विथ दी नॉर्मल। तो यहाँ पर एयर के अंदर, एयर एक मीडियम है तो एयर के अंदर जो लाइट एंगल बना रही है विथ नॉर्मल टू द सरफेस, तो इस वक्त ये एज पर इंसिडेंट है, तो यहाँ पर जो एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और यहाँ पर इसको I1 से रिप्रेजेंट किया गया फिगर 10.10 में पेज नंबर 173 पर इसको I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो कि एन ए से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपके पास एंगल भी है जो लाइट बना रही है उस मीडियम के अंदर विथ नॉर्मल टू द सर्फेस, नॉर्मल के साथ जो लाइट एंगल बना रही है उस मीडियम के अंदर वो भी आपके पास है। अब आप क्या करेंगे कि उसका साइन वैल्यू लेंगे, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ के अंदर साइन होता है, कोसाइन होता है, टैन होता है, कॉट होता है, तो इसमें से हम लोग साइन वैल्यू लेंगे उस एंगल की, जो भी एंगल वो बना रही होगी। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन I1 इंटू एन ए, ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टीप्लीकेशन जो है ये कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो कम होगी क्योंकि एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है, तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा बन जाएगी। अगर आपको कोई प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना होता है तो इसमें से प्रोडक्ट में से अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आते हैं तो डेंसर मीडियम के अंदर आते वक्त जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी, और एंगल की वैल्यू तभी कम होगी जब लाइट टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो यही बात आपको याद रखनी है कि जब भी कभी आप डेंसर मीडियम में होते हैं तो डेंसर मीडियम में होने का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की ज्यादा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो एंगल कम हो जाएगी, एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी, और एंगल की वैल्यू तभी कम होगी जब लाइट बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। और अगर आप रेयरर मीडियम में जाएंगे तो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो एंगल को बढ़ाना पड़ेगा, एंगल तभी बढ़ेगा जब आप अवे फ्रॉम दी नॉर्मल लाइट को बेंड करा देंगे। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एंगल की वैल्यू घटेगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटेगी तो एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ रिफ्रैक्शन के लॉज भी पढ़े थे पेज नंबर 174 पर, इसमें आपको ये बताया गया था जब भी कभी एक पॉइंट पर इंसिडेंट रे पड़ती है फिर वहां से रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ये सभी की सभी जो लाइंस हैं ये सभी की सभी एक ही प्लेन पर होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ये सभी एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। उसके बाद म्यू की वैल्यू यानी कि म्यू भी कह सकते हैं, स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते कैसे हैं, स्नेल्स लॉ जो है ये अप्लाई करते हैं। तो स्नेल्स लॉ बेसिकली वही है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल जो उस मीडियम में बना रहा है उसका साइन वैल्यू, फिर प्रोडक्ट कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ दैट एंगल जो लाइट बना रही है उस मीडियम के अंदर नॉर्मल टू दी सर्फेस के साथ। नॉर्मल तो आप लोग समझते हैं, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। तो परपेंडिकुलर जो बनाया है आपने सर्फेस पर उसके साथ एंगल जो लाइट बना रही है उसका साइन वैल्यू लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, और ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये कॉन्स्टेंट रहता है, और यही बेसिकली स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ जो है ये बेसिकली आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देता है, जो यहाँ पर आप लोगों के पेज नंबर 174 पर लिखा हुआ है। दो लॉज लिखे हैं, फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि किस तरीके से रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल टू द सर्फेस जो है वो एक ही प्लेन में होते हैं, और दूसरे में आपको दूसरे लॉ में बताया गया है कि स्नेल्स लॉ बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरीके से डिफाइन करता है। यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर लिखा हुआ है, आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और साइन आई बाय साइन आर जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है और इसका वैल्यू जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा मेजर है, एक तुलना है दो मीडियम्स की, जिसमें हम बेसिकली कंपेयर करें कि दो मीडियम्स में कौन सी मीडियम में ज्यादा स्पीड है लाइट की, कौन सी मीडियम में कम है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि कंपैरिजन करना चाहते हैं दो मीडियम्स का, जिसमें से हम देखना चाहते हैं कि कौन सी मीडियम में ज्यादा स्पीड है लाइट की और कौन सी मीडियम में कम स्पीड है। जिसमें ज्यादा स्पीड है लाइट की इसका मतलब वो रेयरर मीडियम है, और अगर घनत्व ज्यादा है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब वहां पर स्पीड की वैल्यू कम हो जाएगी। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भी एक प्रोडक्ट होता है जो आपको याद रखना है। आप लोगों को हर एक जो भी मीडियम्स होते हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी रहती है। अब हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी पता लगाते हैं तो ये किसी के रिस्पेक्ट में, किसी की तुलना में हम बताते हैं। तो हम जो स्टैंडर्ड वैल्यू बताते हैं वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर बताते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो सभी की आप लोगों को दी हुई है। पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं 175 पर टेबल 10.3 में आप लोगों को बहुत सारे मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर दी गई है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यू भी आप कह सकते हैं या फिर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। और एयर कहें या वैक्यूम कहें, हम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही मान करके चलते हैं। वैक्यूम का भी 1 मान करके चलते हैं और एयर का भी 1 मान करके चलते हैं। तो आप अलग अलग मीडियम्स का विद रिस्पेक्ट टू एयर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको गिवन है पेज नंबर 175 पर टेबल 10.3 में। तो आप बेसिकली जब दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाते हैं जहां पर एयर नहीं है, कोई दोनों के दोनों मीडियम्स ऐसी हैं जिनका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहां पर अगर आपको एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना है तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप चेक करते हैं कि कौन सा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो आपको जैसे ही पता लग जाएगा कि किस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो आप देखेंगे कि वहां पर उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना होता है, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रखना होता है। मल्टीप्लिकेशन क्या है यहाँ पर, जैसे सपोज कर लो कि एक मीडियम है जिस जो ग्लास है, ग्लास एक मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ng ऐसे लिख रहे हैं। अब इसके अंदर जो स्पीड है लाइट की उसको मान लो कि vg है या फिर v2 है, v2 मान लो। तो यहाँ पर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है विद रिस्पेक्ट टू एयर उसको हमने क्या माना है, ng माना है, और इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हमने v2 माना हुआ है। अब दूसरा मीडियम मान लो एयर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v1 है और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम na से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर आपको बेसिकली प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट करना होता है, प्रोडक्ट मतलब कि आपको यहाँ पर ng इंटू v2 इज इक्वल टू na इंटू v1 ऐसे लिखना है। V1 क्या है, V1 है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, V2 क्या है, V2 है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, Na जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, Ng जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, V2 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम टू या फिर ग्लास, और V1 जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो अगर मान लो आप लोगों को पता लगाना है कि वैल्यू क्या निकल रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको बाकी सारी चीजें एक साइड लानी पड़ेगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को आपको एक साइड रखना पड़ेगा। तो आपने कैसे लिखा है, आपने लिखा है ng into v2 is equal to na into v1। तो आपको ng का पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि ng is equal to na into v1 upon v2, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। और ये आपने बेसिकली क्या पता लगाया, ये आपने पता लगाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और इसको लिखने का जो तरीका होता है किसी एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम फाइंड करते हैं, तो मान लो कि हम सेकेंड मीडियम का फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हम लिखेंगे N21। आप लोग यहाँ पर देखो पेज नंबर 174 पर जो इक्वेशन 10.5 है इसमें लिखने का तरीका आप लोग देख सकते हैं N21 लिखा है। दिस मीन्स दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। सिमिलरली अगर आप लिखें N12 तो इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो यहाँ पर अब हम अगर बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम की, तो ये हम बेसिकली किसी भी मीडियम का पता लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है उस मीडियम का। और हम लोग यहाँ पर जब अगर बात करें वैक्यूम या फिर एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी क्या वैल्यू होती है, तो हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी फिर से बता देते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपको दूसरे मीडियम में क्या वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर ये पता लगाना होगा, तो हो सकता है कि आपको उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दी रहेगी और आपको एयर की स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही है, तो आप इस तरीके से डिवाइड करके पता लगा सकते हैं कि क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम। तो यहाँ पर आप देखो पेज नंबर 175 पर आप इक्वेशन 10.7 देखो, तो इसमें आपको बताया गया कि अगर आप लोगों को किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आप उसको C/V लिख सकते हैं। सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर और वैक्यूम, विच इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वी जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। तो हम बेसिकली आज की क्लास को काफी देर पहले से शुरू कर चुके हैं, तो आप लोग कंटिन्यूएशन में ही मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बीच में छोड़ा था, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो अगर आपसे बोला जाए कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू 1.33 और ये क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इससे आप लोगों को आसानी से खुद से ही समझ जाना है कि इसका मतलब ये है कि हमने पता लगाया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, आपने बेसिकली यहाँ पर अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आप ये लिखना चाहते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। आपकी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दी है तो उसका मीनिंग है कि आपने फाइंड किया है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये इक्वल हो जाएगा आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के, और इसकी वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1.33 टेबल में देख सकते हैं आप, टेबल 10.3 में पेज नंबर 175। सिमिलरली अगर आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू दी गई है 1.52 तो इसका मीनिंग है कि आपने बेसिकली फाइंड किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम। और ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो इससे आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला पता ही चल गया, फॉर्मूला इक्वेशन 10.7 में दिया है। अगर आप लोगों को किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना है, तो आपको बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम जो भी होता है वो सेम ही होता है 3×10⁸ एयर में और वैक्यूम में, तो आप लोगों को बेसिकली एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको डिवाइड कर देना है स्पीड ऑफ लाइट को उस मीडियम के अंदर, जो भी वैल्यू आपको दी गई रहेगी उस किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो वैल्यू आपको दी गई रहेगी, तो आपको क्या करना है कि आपको एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको डिवाइड कर देना है मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे। अब यहाँ पर एक बड़े मजे की बात है जो आप लोग टेबल 10.3 में देख पा रहे होंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन उसकी मास डेंसिटी से उसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो उसकी मास डेंसिटी जो है वो कम है। इसको आप एक एग्जांपल से समझो, जो केरोसिन ऑयल होता है इसकी जो डेंसिटी होती है मास डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी जो होती है इसकी जो आप लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो जो वाटर है और केरोसिन है अगर इनका कंपेयर किया जाए मास डेंसिटी यानी कि डेंसिटी, तो केरोसिन की डेंसिटी जो होती है वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है केरोसिन की ज्यादा है और वाटर की कम है, तो आपको यहाँ पर घनत्व जो बोला जाता है वो घनत्व यहाँ पर मास डेंसिटी वाला घनत्व नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है जो कि अलग है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई सब्सटेंस ऐसा हो जिसकी मास डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू वाटर, लेकिन उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है। एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर लाइट कितना रिफ्रैक्ट होगा ये उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी से पता चलता है। ऑप्टिकल डेंसिटी को पता लगाने का उसका मेजर जो है, उसको मापने का जो तरीका है वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से हम पता लगा लेते हैं। तो जिस भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है तो हम कहते हैं कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम स्पीड होगी लाइट की उस मीडियम के अंदर। तो आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी को कंफ्यूज नहीं करना है विद मास डेंसिटी। मास डेंसिटी अलग होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है। यहाँ पर कंफ्यूज ना होने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन अराइज हो सकता है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो यहाँ पर रेयरर और डेंसर जो बोला जा रहा है ये ऑप्टिकल डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बोला जा रहा है, मास डेंसिटी के बारे में नहीं बोला जा रहा है। तो अगर आप ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का पता लगाना चाहते हैं तो वो वैल्यूज, वो सब्सटेंसेस या फिर वो मीडियम्स जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाते हैं। हो सकता है कि उनकी मास डेंसिटी कम भी हो, लेकिन हमें यहाँ पर मास डेंसिटी के बारे में बात ही नहीं करनी है, हमें यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात करनी है। तो अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो वो ऑप्टिकली डेंसर है, और अगर किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो वो ऑप्टिकली रेयरर है। और वो मीडियम्स जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है यानी कि वो ऑप्टिकली डेंसर है, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी उस मीडियम में। और अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो वो ऑप्टिकली रेयरर हो जाएगा, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 176 पर आ जाओ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें अभी देखना है, इनके आंसर्स डिस्कस करें, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इनके टॉपिक्स जिनके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लीकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हाई। तो यहाँ पर आप लोगों को दो मीडियम्स दिए गए, एक एयर है दूसरा वाटर है। यहाँ पर बोला है कि लाइट जो है वो एयर से एंटर कर रही है वाटर के अंदर, ओब्लीकली एंटर कर रही है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है लाइट की वो कैसे हो रही है, आप लोग देख रहे हैं कि इसकी लाइट की मूवमेंट जो है वो एयर से वाटर के अंदर हो रही है। तो वाटर के अंदर जब आएगी लाइट तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें एंगल की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट जो है वो कॉन्स्टेंट रखना होता है। मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल जो उस मीडियम पे बनाया जा रहा है विथ द नॉर्मल टू द सरफेस, ये एंगल देखा जाता है और उसकी साइन वैल्यू ली जाती है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उसको कांस्टेंट रखना होता है। तो यहाँ पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एंगल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। तो अगर एंगल की वैल्यू घटती है इसका मतलब है कि हमारी रे को टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है लाइट एंटर्स From air to glass having refractive index 1.5, what is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3×10⁸ meter per second. तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला है कि आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लीकेशन को कॉन्स्टेंट करेंगे। इस बार यहाँ पर आप लोगों को स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट करना है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और आप लोगों को पता लगाना है कि ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, और आप लोगों को एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी नोन होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, या फिर एयर का हो या वैक्यूम का हो दोनों की ही 1 ली जाती है। तो वैक्यूम का आपको यहाँ पर बताया गया है, वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1, और वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो भी आप लोगों को ऑलरेडी नोन होती है, आपको उसे याद करके रखना है, जिसकी वैल्यू है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम के अंदर आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता है, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है इसको। तो आपने क्या किया, वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3×10⁸ से, और इसको इक्वल कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इनटू मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इसको मल्टीप्लाई करके आपको इसका प्रोडक्ट जो है इसे कॉन्स्टेंट करना होता है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना क्या है, आपको इक्वेशन जो लिखनी है उसमें आपको लिखना है 1.5 जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है इनटू वी, लिख दो वी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो आप लिखोगे 1.5 इनटू वी इज इक्वल टू 1 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको पता लगाना है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो इसको पता लगाने के लिए बाकी की अदर वैल्यूज जो है उनको एक साइड कर दो और स्पीड ऑफ लाइट को एक साइड कर दो इन ग्लास, तो v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5, इस तरीके से आप लिखेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपकी v की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू जो है ये बेसिकली क्या है, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, पेज नंबर 175 पर आप लोग आ जाओ और टेबल 10.3 देखो। इसमें आप पता लगाओ कि सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी वाला कौन सा मटेरियल मीडियम है, वो मीडियम जिसकी सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम कहलाएगी। तो यहाँ पर एयर जो है इसकी सबसे कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, तो यही वो मटेरियल मीडियम है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है ऐसा मीडियम जिसकी सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो वो मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है इस टेबल के अंदर, वही वो मीडियम है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। तो आप लोग टेबल 10.3 में बहुत इजीली देख पा रहे होंगे कि डायमंड वो सब्सटेंस है, वो मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि यही वो सब्सटेंस है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है यू आर गिवन केरोसिन टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.3। आप लोगों को तीन मटेरियल बताए हैं, केरोसिन टर्पेंटाइन एंड वाटर। अब इनमें से पूछा है इन तीनों मटेरियल में से कौन सा वो मटेरियल है जिसमें लाइट सबसे तेजी से ट्रेवल करेगी, स्पीड सबसे ज्यादा होगी कौन से मटेरियल के अंदर लाइट की, तो लाइट की स्पीड उसी मटेरियल में ज्यादा होती है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उस मटेरियल मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर आप टेबल 10.3 में देख पा रहे हैं कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.33, केरोसिन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.44 और टर्पेंटाइन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.47। जो केरोसिन है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वाटर से ज्यादा है और टर्पेंटाइन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है इन तीनों में से, वाटर केरोसिन और टर्पेंटाइन में से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्पेंटाइन का है, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल जो है वो है वाटर। इन तीनों में से वाटर केरोसिन और टर्पेंटाइन में से सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वाटर की है 1.33, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर में ही सबसे फास्टेस्ट होगी स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद आप फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 गिवन है, इसका मीनिंग ये है कि ये वैल्यू जो है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, विच मीन्स हमने डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड की है विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। और इससे हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो ये बताती है कि डायमंड जो है ऐसा सब्सटेंस है जिसकी सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। इसका मतलब ये होगा कि डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग अब जो नया टॉपिक शुरू करें इस चैप्टर के अंदर वो होगा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो आप लोगों ने कभी आप गए होंगे अपनी घड़ी जो हाथ घड़ी होती है उसे ठीक कराने, तो आपकी रिस्ट वॉचेस को जो ठीक करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो लोग एक मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको जो औजार है छोटे छोटे उसकी इमेज बड़ी दिखे। तो आप लोगों को इतना समझ में आता होगा कि लेंसेज जो होते हैं इससे ऑब्जेक्ट जो होती है वो मैग्नीफाई होकर के दिखती है, उसकी हम लोगों को साइज बड़ी होकर के दिखती है। कुछ कुछ ऐसे लेंसेज होते हैं जिनकी मदद से हमें ऑब्जेक्ट की साइज इमेज जो होती है वो बड़ी होकर के दिखती है। या फिर आप लोगों ने कभी अपने दादाजी का या अपने घर के जो बुजुर्ग है उनका चश्मा देखा होगा, या फिर ऐसे किसी की जिनकी आंखों में थोड़ी दिक्कत है तो आपने उनका चश्मा देखा होगा, तो उनकी किसी किसी के चश्मे में आपने देखा होगा कि इनकी चश्मा जो होता है, किसी किसी का चश्मा तो ऐसा होता है जो बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, और किसी किसी का चश्मा ऐसा होता है जो किनारों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है। तो दो टाइप के हमारे पास लेंस होते हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दो टाइप के लेंस तो हैं। सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि लेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेंस क्या है बेसिकली। तो देखो, लेंस बेसिकली एक ऐसा समझ लो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम को दो कर्व्ड सरफेस से घेरा जाए। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया जाए, ग्लास ले सकते हैं या फिर कोई और सब्सटेंस भी ले सकते हैं। बेसिकली ग्लास लिया जाता है जब लेंसेज बनाते हैं स्पेक्टिकल्स के लिए या फिर मैग्नीफाइंग लेंसेज बनाने के, तो वहां पर हम लोग ग्लास लेते हैं। तो ग्लास लिया है, अब इसको इस तरीके से कटिंग की जाए कि इसकी सरफेस, कम से कम एक सरफेस तो इसकी कर्व्ड होनी चाहिए, दूसरी वाली सरफेस इसकी कर्व्ड भी हो सकती है या फिर प्लेन भी हो सकती है। तो बेसिकली जो हम लोग लेंस को कहेंगे, तो लेंस बेसिकली एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है विच इज बाउंड बाय टू सरफेसेस, और इन टू सरफेसेस में से एटलीस्ट वन ऑफ द सरफेस हैज टू बी स्फेरिकल सरफेस। अदर सरफेस कैन बी स्फेरिकल, इट कैन इधर बी स्फेरिकल और इट कैन बी अ प्लेन सरफेस। तो यहाँ पर लेंस की आपको डेफिनेशन मिल गई। अब आपको यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो दी भी हुई है पेज नंबर 176 पर, आपको रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स इस टॉपिक के अंदर जो सेकेंड पैराग्राफ है यहीं से शुरुआत होती है। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। दिस मीन्स दैट लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। अगर एक स्फेरिकल है तो दूसरा वाला प्लेन हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल है विच इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड अ लेंस। अब अगर ये लेंस ऐसा है जिसमें दोनों ही जो सरफेसेस हैं वो स्फेरिकल हैं और वो इस तरीके के हैं कि वो बीच से थिक हैं और किनारे से एजेस से वो पतले हैं, तो ऐसे स्फेरिकल ऐसी जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस है उसमें क्या हो रहा है, उसमें बीच से वो थिक है, किनारों से पतला है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो बल्ज्ड आउटवर्ड्स होता है, बाहर की तरफ से उभरा हुआ होता है दोनों साइड से। तो ऐसी जो अरेंजमेंट है इसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस भी ऐसा जो बाई कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। बाई मतलब दो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी दोनों ही सरफेसेस जो है इट इज बल्ज्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ से उगा हुआ है ये, इस तरीके की अरेंजमेंट होती है, तो इट इज नोन एज बाई कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली एक और लेंस होता है जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस में भी क्या होता है कि एक सरफेस या तो एक सरफेस स्फेरिकल हो सकती है या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकती है। इसमें जो स्फेरिकल सरफेस होता है इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ से इसका कर्व होता है। तो इसमें भी कॉनकेव लेंस में अगर दोनों ही जो सरफेसेस है दोनों ही स्फेरिकल है, तो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस दे वुड बी कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ से ये मुड़ी हुई रहती है, इनकी स्फेरिकल सरफेस अंदर की तरफ से कर्व्ड होती है। तो ऐसे जो लेंस बनेगा इसे बाय कॉनकेव लेंस कहेंगे। तो अगर बल्ज्ड आउटवर्ड्स है तो देन दैट वुड बी कॉन्वेक्स लेंस, अगर बल्ज्ड इनवर्ड्स है तो ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस को आप टच करते हैं तो बीच से ये पिचका हुआ लगता है, किनारों से मोटा लगता है। तो इस तरीके का जो लेंस आप लोगों को कभी देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि वो एक कॉनकेव लेंस है। बाय कॉनकेव लेंस को सिंपल भाषा में ऐसे भी कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हैं, और बाय कॉन्वेक्स लेंस को सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। इन दोनों लेंसेज का आपको डायग्रामेटिक व्यू दिखाया गया है पेज नंबर 176 पर फिगर 10.12 में। जो ए पार्ट है उसमें आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस दिखाया गया है, बी पार्ट में आपको कॉनकेव लेंस दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं कि इनके दोनों लेंसेज के जो एजेस हैं ये स्फेरिकल हैं, यानी कि ये स्फेरिकल सरफेसेस है, दोनों साइड से इनकी स्फेरिकल सरफेस है। अब जब स्फेरिकल सरफेस है तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि स्फेरिकल सरफेस का होने का मतलब है ये किसी स्फीयर का पार्ट है, किसी सर्कल का पार्ट है, और अगर ये किसी सर्कल का पार्ट है तो इनका कोई सेंटर भी रहा होगा। सेंटर रहा होगा तो हम उसको नाम देंगे, और नाम इसका पहले के जैसे ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पहले की तरह ही इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल सी से। आप लोग देख पा रहे होंगे ए पार्ट में, फिगर 10.12 में ए पार्ट में और बी पार्ट में आप लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाया गया है C1 C2 से। ए पार्ट में आप देखो जो कॉन्वेक्स लेंस दिखाया गया है आपको ए पार्ट में, उसमें C1 और C2 जो लिखा है वो बेसिकली आप लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर बता रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि क्योंकि ये एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इसके दो स्फेरिकल सर्फेसेस हैं, तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। आप लोगों ने जब मिरर में पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स में, तो वो सिर्फ एक ही साइड से कर्व थे, उनका एक ही स्फेरिकल सर्फेस था, तो इसी वजह से उनका एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था। यहाँ पर जो लेंसेज हैं ये बाय कॉन्वेक्स लेंस या फिर बाय कॉनकेव लेंस है, तो इनके दो स्फेरिकल सर्फेसेस है, तो एक एक स्फेरिकल सर्फेस के लिए एक एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों सर्फेसेस के लिए एक एक अलग अलग हो सकते हैं या फिर इक्वल भी हो सकते हैं। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन इट पासिस थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, क्योंकि यहाँ पर दो स्फेरिकल सर्फेसेस हैं, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं, एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को क्रॉस करती हुई एक स्ट्रेट लाइन, इनको ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ की जाएगी वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई ये जो प्रिंसिपल एक्सिस बनाई गई है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक और पॉइंट होता है एंड दिस पॉइंट इज सिचुएटेड इनसाइड द लेंस। जो आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसके अंदर और कॉन्केव लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है। ये पॉइंट जो है बेसिकली उस लाइन पर लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों साइड के लेंस के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इनको ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनी है। तो इस पॉइंट को जो लेंस के अंदर है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है लाई करता है, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। आप लोग देख सकते हैं फिगर 10.12 में ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी, कॉन्वेक्स लेंस में भी और कॉन्केव लेंस में भी, आप लोगों को कॉन्केव लेंस के अंदर और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एक पॉइंट दिखाया गया है, पॉइंट ओ। दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो ये तो कुछ बातें हो गई रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन ही किया है स्फेरिकल लेंसेज का, बाकी की बात हम स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो कनेक्टेड हैं, तो वो कनेक्टेड रहेंगी और उनको नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा तो वो बेटर रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं। आपने जो आज पढ़ा है उसे आपको रिवाइज करना है, कहीं आपको कोई डाउट्स हो तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।